الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مندل چینل کے ناظرین پروگرام ہے دارو لفتا اہل سنت اس سلسلے میں اس پروگرام میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تین طرح کے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس میں سے پہلا شخص فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے دوسرا فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے اور تیسرا فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے آج یہ کچھ ایسی کیفیات ہیں لاک ڈاؤن کی صورتحال بھی اگرچہ جزوی طور پر ہے کاروبار کھل چکے ہیں لیکن ہر طرح کے کاروبار کرنے والے یا محنت مزدوری کرنے والے ضروری نہیں ہیں کہ سب کے معاملات اپنی اسی روٹین پر آگے ہوں ایسے موقع پر اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہوئے اس کی مشکل کو آسان کرتے ہوئے یہ ایک اچھا عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اللہ کریم ہمیں یہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور کثرت سے درود پڑھنے کو بھی رب عز و جل ایسی ہمیں توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ رمضان گزر گیا رمضان ایک وقت ایک مہینہ ہے وہ آیا اور چلا گیا ہم ایز اے مسلم جو تقاضے اور جو شرعی احکامات جن کا ہمیں روز مرہ کی زندگی میں بھی خیال رکھنا ہے انسان کے اوپر اس کے فرائض ہیں واجبات ہیں گناہوں سے بچنا ہے اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ رمضان سے جو ہمیں سبق ایک سیکھ کر اور ایک جو پریکٹس ہوتی ہے اب ہماری زندگی کیسی گزرنی چاہیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یقیناً انسان جو ہے وہ رمضان کے اندر بہت سارے گناہوں سے بھی بچتا ہے اور نہ صرف گناہوں سے بلکہ روزہ رکھتے ہوئے بہت ساری عبادات کو بھی اختیار کرتا ہے اور مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ لعلکم تتقون کے تقوی کا حصول ہو ہم متقی بن جائیں نیک پرہیزگار بن جائیں گناہگار سے گناہگار آدمی بھی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ یار دعا کرو نیک بن جاؤں پرہیزگار بن جاؤں تو بات یہی ہے کہ جس بات کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کی طرف ہماری عملی کوششیں کس حد تک
ٹھیک ہے
تو ماہ رمضان میں ایک تو ماحول ہوتا ہے دوسرا پھر شیطان بند ہوتا ہے تو بہت سارے عوامل کی وجہ سے ہم ایک جو ہے وہ نیکی والے راستے کی طرف چل رہے
نفس
ہوتے
بھی
ہیں
کچھ کمزوری کی طرف کہ روزے کی حالت
بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتا ہے تو لیکن ماہ رمضان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بہت سارے معاملات کے اندر لاپرواہی اختیار کر جاتے ہیں
جی
اب جہاں تک پوچھنے کا تعلق ہے تو دیکھیں اس میں بھی دو پہلو ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات سے متعلق مسائل پوچھنے
ٹھیک ہے
دین عبادات کا نام ہے تو اب چونکہ روزہ تو ختم ہو گیا
صحیح
نماز ایک عبادت رہ گئی ہے اچھا زکات بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ رمضان گیا تو زکات بھی گئی
ٹھیک ہے
تو اب ان کی نظر میں بس ایک نماز رہ گئی ہے تو اب نماز کا اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ امام مسجد سے ہی جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں
اچھا
یا جو ہے وہ آپس میں بھی کچھ جو ہے وہ ایک دوسرے سے اس پہ تبادلہ خیال کر کے اس کے اوپر عمل جو ہے لوگ کر لیتے ہیں یا آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے तो वहां कई बिन बुलाए मुफ्ती जो है वो घूम रहे होते हैं, तो चले जनाब ग्रुप में डाल दिया कि आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में।
सही।
तो हालांकि अगर देखा जाए तो यकीनन इबादात दीन का हिस्सा हैं, लेकिन दीन इस्लाम वो कामिल दीन है जो कि इंसान की जिंदगी के हर शोबे में उसकी रहनुमाई करता है। जिस तरह इबादात दीन का हिस्सा है, इसी तरह मुसलमान को मुआमलात भी दीन के मुताबिक गुजारना जरूरी,
ठीक है,
और उसमें अखलाकियात भी हैं, गुनाहों से बचना भी है। इबादात में फकत फराइज ही नहीं होते बल्कि उसके अलावा और बहुत सारी चीजें भी इबादात में आ जाती हैं, जिसके अंदर जो है वो आपके नेक आमाल हैं जो कि बाज सूरतों में जनाब वजूब के दर्जे पर होते हैं, बाज में सुन्नत के दर्जे पर होते हैं, बाज मुस्ताहबात के दर्जे पर होते हैं। तो एक बंदा मोमिन जो है वो जिस तरह, बल्कि आम दुनिया में जब कोई शख्स जो है वो कोई कारोबार करता है तो कोई भी पैसा हासिल करने वाला कोई जरिया ये कह के नहीं छोड़ देता कि नहीं यार ये तो कोई लाजिम तो नहीं है ना मुझ पर।
अच्छा।
बल्कि वो चाहता है कि यार अगर चार जगह से पैसा आ रहा है तो मजीद चार जगह के लिए भी मैं कोशिशें जारी रखूं।
जी जी।
ऐसा नहीं कि जनाब लॉकडाउन अगर जो है वो 6 बजे बंद हो रहा है तो ये बोले नहीं यार अब 6 बजे के बाद जो है ना मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि अगर इसको दिखेगा कि यार 6 बजे के बाद इस इलाके में नरमी है
कुछ और,
तो मैं जो है वो जनाब 7 बजे तक भी दुकान खोल लूंगा,
ठीक है,
या अगर जो है वो जनाब दुकान खोलने पे प्रॉब्लम है लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जनाब मैं पब्लिसिटी करके या मैं जो है वो शॉप लगा सकता हूँ तो मैं उस चीज की तरफ बढ़ जाऊंगा। तो यूं ही हमें दीन के मामले में भी ख्याल रखना चाहिए कि इबादात फर्ज वाजिब तो करनी ही करनी है, यूं ही सुन्नत मौकदा भी लाजमी तौर पर अदा करनी है, इनके अलावा जो इबादात हैं, नेक आमाल हैं, जो सुन्नत गैर मौकदा हैं, नवाफिल हैं, मुस्तहबात हैं, उन पर भी अमल करके हम ज्यादा से ज्यादा नेकियों का जखीरा अपने नामा आमाल में जमा करें, क्योंकि क्या मालूम कि कौन सी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। यानी ये जो हम सब नेकियां कर रहे हैं कबूलियत का तो कंफर्म नहीं है ना कि जनाब ये कबूल ही कबूल है, अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, तो चाहिए ये कि नेकियों का खजाना जो है वो ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करें। तो बहरहाल जब आप मामलात की तरफ आएंगे तो इस चीज के अंदर बहुत जरूरत पड़ती है इस अमर की कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, जक़ात भी आप जो है वो दे रहे हैं, हज उमरे भी कर रहे हैं, लेकिन अपने मामलाते दुनियाविया के अंदर आप जो है वो दीन को फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कई दफा ऐसा होता है कि आपके पेट में जाने वाला रिस्क हराम हो जाता है। और हालांकि जब रिस्क हराम हो जाए तो बंदा फिर यारब कहता रहे, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी इबादत कबूल नहीं होती,
यानी कमाई का ये गलत अंदाज, गैर शरी अंदाज उसकी इबादत
पर भी जो है वो असर अंदाज हो जाता है। तो इसी तरीके से हुकूकुल इबाद के मामलात ले लें कि जनाब जो है वो वालिदैन के हुकूक हैं, बहन भाइयों के हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक हैं, ये तमाम चीज़ों के अंदर भी हम लापरवाह हो जाते हैं। किसके क्या हक हम पर लाजिम है वो जानते ही नहीं हैं, या अगर मुआशरे में ख़ास तौर पे हुकूक से मुतालिक कोई बात आती है तो उस बारे में तो लोग दीन की रहनुमाई लेना शायद ज़रूरी ही नहीं समझते, बल्कि रस्म और रिवाज या जनाब जो है वो वालदेन ने जिससे बात करने से मना कर दिया उससे हमने बात ख़त्म कर दी या कदर ताल्लुक कर दिया, या जनाब किसी से कोई मसला हो गया तो ख़त्म कर दिया, तो वहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि यार अगर मैं यहाँ बात ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ऐसी प्रॉब्लम है, तो क्या मैं इसके ऊपर पूछूँ उलमा से कि क्या मेरा ऐसा करना जायज़ है या नहीं है, या अगर इजाज़त है तो कितने दिन तक मुझे इजाज़त है। तो ये सारे पहलू हैं जिसके बारे के अंदर हमें यही हुक्म है कि फस अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर नहीं जानते तो जानने वालों से तो पूछो। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के मुख्तलिफ सिलसिले होते हैं, तो मैं नाज़रीन से यही अर्ज़ करूँगा कि न सिर्फ सिलसिले में, क्योंकि सिलसिले का एक मुख्तसर वक्त होता है, उसके अंदर हर एक की कॉल जो है वो चल सके वो भी मुमकिन नहीं होता, अपना ये जहन बनाए कि कोई भी काम करना है तो दीन की रहनुमाई में करना है
माशाल्लाह।
और उसके लिए आपके पास दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के फोन नंबर्स भी मौजूद हैं, आप उन पर भी कॉल कर सकते हैं, बिल मुशाफा मुलाकात भी जो है वो आप कर सकते हैं, सिलसिलों में भी आप कॉल कर सकते हैं। तो अब तो आपके लिए पूछना बहुत आसान है, पुराने दौर के अंदर लोग जो है वो कितना ऊँटों का सफर करके, पैदल सफर करके एक एक हदीस हासिल किया करते थे, आज तो आप जनाब 2 मिनट की कॉल के ऊपर पैकेज हो तो जनाब मुफ्त की कॉल के ऊपर आप जो है वो رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے. اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے شفیع صاحب کہ پوچھ لیں گے تو یار پھنس جائیں گے.
ایک سے دو بجے تک نماز اور کھانے وغیرہ کا یہ دارالتامہ وقفہ ہوتا ہے, باقی انشاءاللہ 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک کل دورانیہ تقریباً یہ 5 گھنٹے بندے مسلسل کالز کا ایک جسے کہنا تانتا بندہ ہوتا ہے. اور ایسا ہے لیکن زیر ناظرین کی یہ شوق ہے, یہ بھی ہے. کتنے ہمارے ایسے احباب ہیں ماشاءاللہ جن کو بہت شوق ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی سلسلے میں بھی بات ہوتی. پچھلے دنوں بھی نگران شورا عبدالحبیب بھائی کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا تو اس میں بھی ایک کال آئی. نہیں, آسان کیا ہے ملاقات, اور میں نے اس کا جواب یہ دیا بالمشافہ ملاقات کرنا دارالافتاء کے کسی مفتی صاحب سے یہ قطعاً مشکل کام نہیں. اچھا, بعض اوقات آدمی یہ, آپ خود بتائیں کہ یہ ہمارا ایک جو عوامی ادارہ ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے, الحمدللہ داؤد سامی نے اس کو بنایا اور بنایا بھی اس کو تقریباً عوامی پوائنٹس پر ہے. ہمارے کراچی کے اندر مدنی چین کے ناظرین بابری چوک کنز ایمان مسجد جس میں ہمارے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق صاحب وہاں کے امام بھی تھے, وہاں کے خطیب بھی تھے, اور یہ ایک مرکزی دارالافتاء ہے کراچی کا ہمارا. یہ بھی 10 سے 4 بجے تک بالکل آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. اور بلکہ میں یہ دعوے سے کہوں گا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وہاں گیا مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی. کیا کہتے ہیں آپ؟ ایسے ہی. اچھا, بعض کا لوگ دیکھیں یار یہ ٹی وی پر آ رہے ہیں تو یہ وہاں آ رہے ہیں تو یہ وہاں آ رہے ہیں, ان سے ملنا تو بھائی کیا کہتے ہیں.
ایسا ہی ہے کہ دارالافتاء کی ٹائمنگ کے اندر بعض لوگ جو ہے وہ پرسنل نمبر ہمارے مانگتے ہیں.
جی جی,
مجھ سے بھی 2-4 نے کہا. میں نے کہا دیکھیں آپ کو میں پرسنل نمبر دے دوں گا تو اب مجھے یہ بتائیں آفس ٹائم کے اندر میں آپ کا فون سنوں یا دارالافتاء کا فون سنوں؟ اب اگر آپ میرے ذاتی نمبر پہ فون کریں اور آپ کا تقاضا بھی یہ ہو کہ میرا فون سنیں مفتی صاحب,
جی جی,
تو بھائی وہ جو سروس کے نمبر چل رہے ہیں پھر ان کی شکایت ہوگی کہ مفتی صاحب ہمارے فون نہیں سنتے.
صحیح بات ہے.
میں نے کہا اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں اپنے نمبر دینے سے, آپ آفس کے فون پہ فون کریں تاکہ ہم بھی اس وقت میں ہمیں پتا ہو کہ یار اس فون کا کام نہیں ابھی.
صحیح بات ہے,
ہمیں یہاں پر اس وقت جو ہے وہ دارالافتاء اہل سنت میں عوام کی رہنمائی کرنی ہے اور انہیں جوابات دینے. اور ایسا ہی ہے کہ نہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے آنے کے لیے.
جی بالکل,
ٹائمنگ ہے, اس ٹائمنگ کے اندر آپ آتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جناب 4 سائلین آئے ہوئے ہیں پہلے سے, وہ بات کر رہے ہیں تو وہ 10-15 منٹ میں فارغ ہو گیا, اس کے بعد آپ کا نمبر آ جاتا ہے, آپ جو ہے وہ رہتے ہیں.
اور دارالتہ میں ہمیں آج تک کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا, امید ہے انشاءاللہ جو ہمارا نظام ہے کہ بھائی یہ 4 بندے یہ بیٹھے ہوئے تھے اب پانچواں آیا تو وہ چاروں کو کراس کر کے وہ چلا گیا, ہے ایسا کیا؟
ایسا بھی نہیں.
ہاں, کوئی ایک آدھ بات پوچھنے چلا گیا مسئلے کی نہیں, کسی انتظامی معاملے میں کہ بھائی وہ ہو سکتا ہے مفتی صاحب نے اسے کسی کام میں بھیجا اور وہ بات کرے. لیکن یہ باقاعدہ ہمارے یہاں الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ یہ 4 کو چھوڑ کر اب مفتی صاحب ان سے میٹنگ کر رہے ہوں جو جواب دینے کے لیے وہاں پہ. تو دارالافتاء کا عملہ ہے, سٹاف ہے, کچھ لکھنے پر, کچھ کال سننے پر, کچھ ای میلز, واٹس اپ. یہ واٹس اپ بیرون ملک کے لیے, بلکہ حضرت آپ ان کے نگران تھوڑا سا بتا بھی دیں واٹس اپ والے شعبے.
جی واٹس اپ جو ہے وہ ہمارا,
لیکن آپ سے ڈیمانڈ بہت ہے لوگوں کی کہ آپ ہمیں پاکستان کے لیے بھی آن کریں اور آپ واٹس اپ کی دنیا جو آپ کو پتہ ہی ہے بلائے اتنے واٹس اپ آ رہے ہوتے ہیں تو
ایسے. اصل میں دیکھیں یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ بہرحال دعوت اسلامی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں الحمدللہ اس کے اندر عوام کا مطالبہ زیادہ ہے, عوام کا رجوع زیادہ ہے, اور بہرحال افراد کی قلت ہمارے پاس ہے. دعوت اسلامی نے پوری اہل سنت کے اندر کوشش کی ہے کہ اچھے سے اچھے شعبہ جات اور اچھی سے اچھی سروس فراہم کرے اور آسان سے آسان,
آسان
لوگوں کے گھر تک جو ہے وہ فراہم کرے. لیکن بہرحال افراد کی قلت اپنی جگہ پر ہے ہر شعبے کے اندر ہے.
اور دوسری طرف میں سائلین کی تعریف بھی کروں گا, یعنی رجوع بھی زیادہ ہے,
رجوع بھی زیادہ ہے,
رجوع بھی. اگر ماشاءاللہ قبلہ امیر علیہ سنت اللہ کریم ان کو سلامت رکھے, ان کا سایہ سلامت رکھے, ان کو اور ہمت دے, اور جس طرح وہ تربیت فرما رہے ہیں اور یہ شعبہ جات جیسے چل رہے ہیں الحمدللہ, وہ کہتے ہیں نا اللہ کے ولی کی زبان سے نکل جائے. امیر علیہ سنت نے فرمایا تک 12 بنائیں گے, ٹھیک ہے. اب اس وقت 2020 میں ہم اس ہدف تک پہنچ چکے ہیں, لیکن چونکہ جب لاکھوں لوگوں کا رجوع ہے روزانہ جو ہمیں اتنے رابطہ کرنے والے ہیں, اب ہم 10,000 سے زائد ہم جوابات دے رہے ہیں ایک مہینے کے جو ہمیں ریکارڈ میں آ رہے ہیں اور ہمارے وہ سامنے ہیں, وہ چاہے فون پر ہوں, تحریری ہوں, واٹس اپ پہ ہوں, ای میلز پہ ہوں. تو ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. اچھا سلسلوں کی جو رونق بنتے ہیں ہمارے ناظرین, ان کی بھی ایک اچھی نیتیں یہ بھی ہوتی ہیں. بعض وقت مجھے ایسا محسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے یا ہوتا ہے کہ ان کو مسئلہ خود پتہ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ بھی بہت اچھا عمل ہے. آپ ریکارڈ ضرور کروایا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایشو چینل پر ڈسکس ہونا چاہیے اور یہ مسئلہ آن ایئر ہونا چاہیے, آپ ریکارڈ کروائیں. آپ کو پتہ بھی ہے لیکن اس مسئلے کا تعلق آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں اور ان کی رہنمائی ہونی چاہیے, تو بالکل آپ گھبرائیں نہیں, آپ کال کریں. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی اس سوال کو بھی ہم شامل کریں گے.
پاکستان کے اندر تو دیکھیں ہمارے پاس مختلف ذرائع ہیں شرعی رہنمائی لینے کے. علماء سے آپ بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں.
یہ آپ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ابھی واٹس ایپ کیوں نہیں دیا.
جناب آپ بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں, فون سروس آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہے, آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. جبکہ بیرون ملک والوں کے لیے یہ آسانی جو ہے وہ نہیں ہے. فون سروس اگرچہ ہے ہماری بیرون ملک کے لیے, لیکن وہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ چونکہ اندر سی بات ہے کہ پوری دنیا کے مختلف ممالک کے مختلف ٹائمنگز ہیں. ہمارے یہاں پتہ چلا سونے کا ٹائم ہے تو ان کے یہاں اٹھنے کا ٹائم ہے, ہمارے یہاں اٹھنے کا ہے تو ان کے یہاں سونے کا ٹائم ہے.
ٹھیک ہے,
اس لیے سے فقط بیرون ملک کے لیے ہم نے واٹس اپ سروس کو جو ہے وہ رکھا ہے, اور تاکہ وہ لوگ جو باہر رہتے ہیں ان کو علماء دستیاب نہیں ہیں, اور وہ اگر کسی چیز پہ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو وہ اس کے اوپر رہنمائی لے سکتے ہیں. یہاں پر میں یہ بھی ناظرین سے عرض کروں گا کہ کوشش کیا کریں کہ آپ سوالات وہ کیجئے جو آپ کو درپیش ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب درپیش سوال آپ پوچھیں گے تو ممکن ہے کہ وہ کم ہوں گے, بجائے اس کے کہ اوور آل آپ جو ہے وہ بات
پہ اور واٹس ایپ پہ اور
واٹس ایپ پہ کہیں بھی آپ دیکھ لیں. کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ ویسے سوالات کی بات کریں تو دنیا ہی پوری سوال ہے.
دنیا ہی پوری سوال ہے
نا, کہ جناب یہ کب یہاں کیوں ہے, تو یہ چیز ایسے کیوں ہے, یہ چیز وہ کیوں ہے, تو یہ تو سوالات کی تو پھر دنیا جو ہے وہ بہت بڑی ہے. تو اب یہ ہے کہ جوابات تو ہم آپ کو دیتے ہیں, جب آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو جواب سے منع نہیں کرتے, لیکن اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ہی میں سے بعض ناظرین اپنے اصل سوالات کے جوابات سے محروم رہ جاتے ہیں, کیونکہ آپ ان کا ٹائم جو ہے وہ اکوپائی کر لیتے ہیں. تو لہٰذا جن کو ضرورت ہوتی ہے کہ جس کو پوچھنا ہے کہ بھائی میں نے نماز پڑھنی ہے, مجھے ابھی بتا دیں کہ میں نماز کا کروں کیا میری اس نماز کا, اور آپ پوچھنے کے جناب تاریخ کے اس واقعے کی ذرا کچھ آپ ہسٹری بتائیے کہ وہ کیسے ہے, کیوں ہے, کیسے ہے, تو وہ بھی چلیں بتا دیں گے آپ کو. لیکن بہرحال جو درپیش جس کو ہے اس کا وہ مسئلہ رکا رہے گا, تو تھوڑا سا دوسروں کا خیال کریں, کیونکہ ممکن ہے کبھی آپ کو بھی اسی طرح کا اپنا درپیش مسئلہ ہو اور پھر کوئی اور صاحب جو ہے وہ تاریخ کے اوپر جو ہے وہ
احساس ہوتا ہے جب ہم کبھی ویٹنگ میں ہوتے ہیں کہیں بھی نا, چاہے ڈاکٹر کے پاس ہو, تو آپ کبھی ہم انتظار کر رہے ہیں پہلے والا مریض وہ بیٹھا ہوا نا, تو بعض کا ڈاکٹر بھی اکتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو ابھی 5 مرض میں نے ایک ساتھ صحیح نہیں کرنے, پہلے ایک بتا دو مہربانی کر کے نا, پہلے یہ بتاؤ اس کے بعد اگلا, پھر اس کے بعد اگلا. ہماری چونکہ فیلڈ تھوڑی سی ملتی جلتی ہے, ہمیں تربیت امیر علیہ سنت کی طرف سے اس انداز پر یہ بہت ہے کہ احسن انداز سے, اچھے انداز سے, پیار محبت سے سمجھا کے ہم ان کو روانہ کریں, اور یہ ہمارا ایک دینی ذمہ داری بھی ہے مدنی چند کے ناظرین. اور انشاءاللہ العزیز آپ دارالتہل سنت کو ایسا ہی پائیں گے, اللہ کرے گا اس میں اور ترقی ہوگی, افراد بڑھیں گے. آپ کے سوالات کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, تو دیکھتے ہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی سوالات ہوں
سر, جانی گاؤں سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ سود کے متعلق جو ہے کچھ ہمیں آگاہ کریں کہ سود کی کتنی قسم ہے, اس کے متعلق ہمیں معلومات لیں.
ٹھیک ہے, دیکھیں سود کے بارے میں سمپل سی اگر ہم بات کریں, سود کی دو طرح کی اقسام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرض کے بدلے میں جو ہے وہ نفع جو ہے وہ دیا جا رہا ہے, اور وہ مشروط ہے, کنڈیشنل تھا کہ جناب میں قرض دے رہا ہوں, اس کے بدلے میں آپ مجھے جب واپس کریں گے قرض تو اس کے اوپر اتنے پیسے اضافی دیں گے.
ٹھیک ہے,
تو ایک تو یہ سود ہے جو کہ عام طور پر پایا جاتا ہے جب بھی قرض کے لین دین میں پایا جاتا ہے. دوسرا ایک اور سود کی قسم ہے کہ بعض چیزیں ہیں کہ ان کے لین دین کے اندر جو ہے وہ برابری جو ہے وہ شرط ہے. یوں نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ جو ہے وہ किसी से अगर आपने गंदम जो है वो लिया है तो आप बदले में 1 किलो गंदम लें और वापस बदले में उसको 1.25 किलो दें, अगरचे क्वालिटी वाइज जो है वो दोनों के अंदर फर्क हो तो ये भी नहीं हो सकता कि ये भी सूद है,
यानी हम जिन्स हो जाना उनका,
हम जिन्स होना कहलाता है। इसी तरह बास चीजें वो हैं कि जिसके अंदर हाथों हाथ आप जो है वो हैंड टू हैंड जो है वो अगर तबादला कर रहे हैं तो कमी बेशी हो सकती है, लेकिन उधार उसका जायज नहीं है। जैसा कि आपके नए नोट हैं, करेंसी नोट हैं, कि आप पुराने करेंसी नोट के बदले में नए करेंसी नोट की गड्डी लेते हैं तो बस औकात आपको उस पर कुछ पैसे जो है वो इजाफी देकर नई गड्डी लेनी होती है। तो ये आप हैंड टू हैंड तो ज्यादा पैसों में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका उधार कर रहे हैं तो ये जायज नहीं है।
इसमें क्या जो है वो ये मतलब पैसों की गड्डी आप हैंड टू हैंड आप कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे 1000 रुपए की ये
पैसे से 10 रुपए का नोट की जो गड्डी है वो 1000 रुपए की है। अब आप अगर मार्केट में लेने जाते हैं तो मे बी कि वो 1500-1050 रुपए की मिले, तो अब अगर आपने 1050 का नोट दिया, 1000 का पूरा बंदा नोट दिया, 50 रुपए ऊपर दिए और नए नोट की कड़क गड्डी ले ली, तो ये तो जायज है कि आपने हाथों हाथ जो है वो लिया।
जायज है ये
क्योंकि इसके अंदर जींस तो पाई जा रही है कि दोनों तरफ पेपर तो है,
करेंसी
भी है, लेकिन जो इसके अंदर कदर है, जो फिकी इस्तिलाह के एतबार से जो है वो माप है, वो इसके अंदर नहीं पाया क्योंकि काउंट होती है ये तोली जो है वो, या किसी चीज के अंदर भरकर मापी जो है वो नहीं जाती।
अच्छा,
तो जब कदर नहीं है तो जिंस और कदर ये दो बुनियादी जो है वो चीजें हैं हम चीजों के अंदर फिकी इस्तिलाह के एतबार।
अच्छा, आम लोग यही है कि भाई पैसे पे आपने पैसा ज्यादा लिया तो सूद हो गया
जी,
सीधा सीधा
जी ऐसा ही है। अच्छा, अब हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ये जो मे भी शायद दुकानदारों में जो आपस में लेन देन होता है ना, कभी जरूरत पड़ने पर किसी से कोई सामान ले लिया और फिर वहां तो शायद हो सकता है इस तरह का कुछ होता हो, वरना आमतौर पर इस तरह की चीजें नहीं होती, लेकिन सोने में ये बहुत होता है। खासतौर पर बाज इंडस्ट्रीज हैं कि उसके अंदर बहुत ज्यादा जो ना आप समझें कि आप उसमें तलवार की धार पे चल रहे होते हैं कि इधर गए तो आप सूद में गिर गए और इधर आप रहे तो जो है वो ठीक रहे, तो उसमें ये एक सुनार वाली है। तो बहरहाल इसके अंदर ये मामला है, लेकिन उमूमी तौर पर हमारे यहाँ जो कर्ज का लेन देन होता है उसमें ये चीज पाई जाती है। यूं ही और भी कई चीजें हैं, कर्ज के अलावा भी होता है, किस्तों पर आपने कोई चीज ली और फिर जनाब उसकी आप किस्तों की टाइमिंग बढ़ाते हैं और उसके बदले में आप पैसे बढ़ाते रहते हैं, तो ये भी जो है वो सूद ही शुमार होता है।
ठीक है नाज़रीन, ये बहुत एक वसी टॉपिक, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसके मुख्तलिफ अंदाज से हम लेंगे। हम इसको पहले कुछ अजनास के एतबार से भी इस तौर पर भी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा है अंदाज कि जिसमें लोगों को ना पैसा देना है ना पैसा लेना है, बल्कि वो अजनास का ही तबादला आपस में
चीजों का ही तबादला।
अभी ये आप दे दें उसके बाद हम आपको, जो चाहे गंदम हो चाहे आटा हो चीनी वाला चीनी, तो ये इस तरह के भी तबादले इनके यहाँ होते रहते हैं और जो इस तरह बिजनेस करते हैं मुख्तलिफ ये अंदाज में, तो
खासतौर पर ये जो खुराक के पता नहीं कौन अनाज मंडी
जी जी
उनका जो है वो ये एरिया जो
एक एरिया रहता है, तो ये पूरा एक डिपार्ट है ये, अगर ये इनको लिया जाए तो इंशाल्लाह वलीद अल्लाह ने चाह तो जरूर इस पर जो है वो। आपका सवाल ये है कि बैंक में पैसे रखना जायज है? बैंक में पैसे आप अगर रखते हैं, करंट अकाउंट है उसमें और उसमें आपका पैसे रखना जायज है? बैंक में कोई भी ऐसा अकाउंट खुलवाना जिससे आपको नफा हासिल हो, जैसे सेविंग अकाउंट है, उसमें जायज नहीं है ना वो नफा लेना जायज है? अगर आपने रखना ही है तो बिल्कुल एक सादा जो करंट अकाउंट है उसके अंदर आप अपना पैसा हिफाजत के लिए आप ये रख सकते हैं, और ये वाला अकाउंट खुलवाना बैंक का ये जायज है। खुश हो गए आप, चलें माशाल्लाह मजीद, ये भी आपकी दिलचस्पी के लिए हम ये एक मामला वो रखा है, अल्लाह करेंगे इंशाल्लाह इसमें मजीद बेहतरी आएगी। हजरत कफील साहब, ये एक और पूछ रहे हैं कि फेसबुक पे हैं ये अब्दुल रजाक साहब कोई, और ये कह रहे हैं कि पालतू जानवर हमने बकरे हैं और वो बकरे बेचने हमने कुर्बानी पर, इनकी ज़कात का मसला एक, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि आजकल जैसे नफली रोजे, ये पूछ रहे हैं अरशद अनवर भाई, ये कह रहे हैं नफली रोजे हैं और ये इनको बगैर सहरी के हम रख सकते हैं क्योंकि अब उठने के ऐसे मामलात नहीं होते, शायद इसी तरह का इनका भी मामला है। ठीक है भाई, इंशाल्लाह इसको भी हम शामिल करते हैं। आप पहले दे दें इसका जवाब, ये नफली रोज़े रखने हैं इसको, तो ये सहरी क्या करें?
सहरी करना देखें सुन्नत है, और चाहे नफिल रोज़ा हो या जो है वो फ़र्ज रोज़ा हो या कज़ा रोज़ा हो या कोई वाजिब रोज़ा हो, हर एक के लिए ही सहरी सुन्नत है। लेकिन अगर सहरी नहीं की, इवन फ़र्ज रोज़े के लिए नहीं की,
ठीक है,
या बाज़ लोगों के जहनों में ये होता है कि नफिल के लिए करना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। अगर बगैर,
क्योंकि रमज़ान तो मुतय्यन है, दिन में रोज़ा ही रोज़ा है, तो नफिल
बगैर सहरी के भी अगर आपने रोज़ा रख लिया तो रोज़ा हो जाएगा। बल्कि नफिल रोज़े में आपकी नीयत भी नहीं थी, जब आप सो के उठे नीयत भी आपकी नहीं थी, ना रात नीयत थी, और आपने देखा उठ के यार मौसम बड़ा खुशगवार है, चलें अल्लाह की इबादत करते हुए रोज़ा ही रख लेता हूँ आज
अल्लाह।
तो अगर ज़हवा कुबरा नहीं हुआ, यानी जिसे आवाम जवाल का वक्त कहते हैं,
ठीक है,
अगर वो नहीं शुरू हुआ उससे पहले पहले आप नीयत कर सकते हैं
नफली रोजे में।
नफली रोजे
किस में ये कर,
फर्ज रोजे के अंदर भी जो है वो आप ये नियत जो है वो कर, अलबत्ता जो कजा रोजा आपका है उसमें ये नहीं है, उसमें आपको सुबह सादिक से पहले पहले नियत करनी होगी
कजा।
हाँ, मगर हम ये नहीं कह रहे कि सहरी करनी होगी, नियत करनी, नियत होगी। तो अगर किसी ने रात में कोई नियत करके सोया कि ठीक है भाई मैं जो है वो सुबह मेरा रोजा है और मैं सहरी के लिए उठूँ या ना उठूँ बहरहाल मेरा रोजा है, तो अब अगर वो उठा और जनाब जो है वो वक्त ख़त्म हो गया था सहरी का, तो ठीक है रात वाली नियत से वो रोज़ा अपना कज़ा रख सकता है।
तो ये ज़हवा कुबरा तक इससे पहले पहले नियत कर,
रोज़े के अंदर जो है वो ज़हवा कुबरा से पहले पहले कर सकते हैं, कज़ा में जो है वो आखिर टाइम जो है वो फ़कत।
ज़हवा कुबरा हमारे यहाँ तकरीबन आजकल जैसे
आवाम में तो 12 बजे का जो है वो मशहूर है, वो हमारे यहाँ बाबुल मदीना में इस वक्त ज़हवा कुबरा है 11:46 पर,
11:46 से
और 12:30 तक,
12:30
तक,
30 तक ये रहता है।
आप अगर नक्शे में देखेंगे तो ज़हवा कुबरा का वक्त लिखा होगा लेकिन इख्तिताम में वक्त नहीं लिखा होगा। इख्तिताम में वक्त आपको कैसे पता चलेगा? आप जोहर का वक्त देखिए, शुरू का बोरा,
शुरू का बोरा, तो वो
जोहर का वक्त जो है वो 12:30 पे शुरू हो रहा है, लिहाजा 12:30 पे जैसे ही जोहर का वक्त शुरू होगा ज़हवा कुबरा खत्म हो जाएगा।
ये ज़हवा कुबरा जिसे आवाम नाज़रीन ज़वाल का टाइम बोलते
हैं, ज़वाल का वक्त कहते हैं,
तो हम 11:46 से पहले पहले,
11:46 से पहले, और ये रोजाना का तब्दील हो सकता है, आगे जाके और भी तब्दील हो सकता है, बस औकात ये जो है वो और भी पीछे।
नॉर्मल लोगों का ये होता है जैसे 8 बजे 9 बजे,
हाँ ये तो बिल्कुल
बना रही है। अच्छा अच्छा, ये जो ये नियत बनानी है 8-9 बजे, ये क्या कि मैं अभी से रोजे में या सुबह से रोजे में
या जो है वो एक गिलास पानी पी के जो है वो रोजे से हूं?
ये
तो देखिए नियत तो जो है वो अवलन तो कुछ खाना पीना नहीं है, अगर आपने जान बूझ के खा पी लिया तो अब आप नियत नहीं कर सकते।
आप पता चले फजर की नमाज पढ़ी उसके बाद एक दो घूंट पिए हुए चले, वुजू करते ही पी लिए थे फजर की नमाज पढ़ते हुए, और अब 9 बजे कह रहे हैं कि अब नियत भी कर लूं, हो सके?
तो अगर आपने जानबूझकर जो है वो पिया था तो फिर बहरहाल अब आपका रोजा नहीं हो सकता। और ये कि जब भी नियत करेंगे आप बाद में, तो नियत यही होगी कि सुबह से रोजे से हूँ, ये नहीं कि जनाब अब 9 बजे से या 10 बजे से रोजे से हूँ, क्योंकि रोजा बहरहाल जो है वो सुबह सादिक,
सुबह सादिक से
पूर्व आफ्ताब तक होता है।
तो हम ये चीजें इसलिए बिल्कुल वाजे खोल कर ये बता रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि सहरी नहीं हुई तो अब रोजा ही नहीं होगा, अब रख ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये आपने कहा कि मौसम अच्छा देखा, ये देखा, इस तरह की भी नियतें क्या है ये?
नहीं, ये तो माहौल नियत बनाने के लिए ना। अच्छा, आप सुबह उठे और आपने देखा कि यार आज गर्मी की शिद्दत कम है,
यूं मतलब एक आदमी सहरी में भी उठा, उसने सहरी कर ली, ऐसा भी हो सकता है कि नफली सहरी भी कर ली नफली रोजे की
जी जी
और नियत नहीं की,
यूं हो सकता है। यानी असलन तो सहरी खुद जो है वो नियत के कायम मकाम है, वो आप नींद में से उठ के क्यों सुबह खा रहे हैं भाई?
हाँ,
रोजा रखने के लिए,
वो रोजा रखने के लिए
खा रहे हैं आप, तो सहरी करना इसीलिए कर रहे हैं कि रोजा आप रखेंगे,
अब वो रोजा हो गया सुबह।
अब अगर आप नियत ये कर लेते हैं, यानी एक ही सहरी खुद नियत है, लेकिन अब अगर आप उस नियत के अगेंस्ट दूसरी नियत करते हैं कि ये मैं फकत जो है वो पेट भर रहा हूँ,
ठीक है,
इससे मैं रोजे की नियत नहीं कर रहा, मैं रोजे की नियत जो है वो जनाब 8-10 बजे तक जो है वो मौसम देख कर मैं जो है वो फाइनल करूंगा कि आज का रोजा रखना है या नहीं रखना, तो यूं भी आप जो है वो कर सकते हैं नफली रोजों के अंदर।
नफली रोजों में ये ऑप्शन मौजूद है। कई ऐसे होते हैं बीमार टाइप भी होते हैं, कईयों को ऐसे मामला होते हैं कि अगर मैंने इतना वक्त गुजार लिया ना तो गुजर जाएगा,
तो गुजर जाएगा।
तो हम उनको भी कह रहे हैं कि इबादत का अगर ये अंदाज भी इख्तियार करके वो करेंगे तो इंशाल्लाह उनका ये रोजा भी हो जाएगा। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने भी ये सवाल पूछे हैं। वो बकरे वाला बीच में फेसबुक पे एक सवाल आया है और
बकरों का मसला चल रहा है चूंकि
कुर्बानी
आप बढ़ रहे हैं,
कुर्बानी की तरफ बढ़ रहे हैं।
शव्वाल है, फिर ज़िलक़ादा है और फिर ज़ुलहज्जा है। तो बहरहाल जो जानवर आपने बेचने के लिए खरीदे, हम बात कर रहे हैं खरीदे, अगर खरीदे आपने नहीं, आपके घर पर ही कोई जानवर थे जो आपने पाले हुए थे, उन जानवरों से ही बच्चे हुए, उनकी बात नहीं, जो आपने खरीदे ही,
वो बकरियां तो खरीदी थी ना,
अब वो खरीदी थी लेकिन बेचने के लिए नहीं खरीदी।
अच्छा ठीक है, ठीक।
तो अब अगर आपने जो जानवर बकरे वगैरह खरीदे इसलिए कि इनको मैं बेच दूंगा, तो अब ये माले तिजारत हुए,
ठीक है।
तो अब जब तक वो माल आपके पास है, अगर इस अय्याम में आपका साल ज़कात का पूरा हो रहा है, तो फिर आपको उन बकरों की कीमत के एतबार से भी ज़कात अदा करनी होगी, लेकिन डिपेंड यही करता है कि साल पूरा हो रहा हो, साल इस दौरान, ये मैं 2 महीने, आपने 3 महीने के लिए खरीदे शॉर्ट टर्म के ऊपर, और इस दौरान आपका साल पूरा नहीं हो रहा, साल पहले पूरा हो गया, या जनाब
बकरे का साल पूरा नहीं हो रहा, या इसकी ज़कात वाला, ये
अपनी ज़कात का साल, तो अपनी ज़कात का साल पूरा इसका होगा इस दौरानिए में, तो फिर इसके ऊपर उन बकरों की कीमत के एतबार से उसकी ज़कात लाजिम होगी, और फिर जब आप बकरों की वैल्यू लगाएंगे तो वो कीमत खरीद पे नहीं लगाएंगे, बल्कि अब जो आप बेचेंगे उस तारीख को, जिस तारीख को साल पूरा हो रहा है, उस तारीख को मार्केट वैल्यू जो उन बकरों की होगी, उस एतबार से आपको उसकी ज़कात कैलकुलेट करनी होगी।
ठीक है माशाल्लाह। देखें मदनी चैनल के नाज़रीन, कुर्बानी के जब हम प्रोग्राम करते हैं तो सिर्फ यही पूछा जाता है कि ये बकरे की कुर्बानी या फलां जानवर की कुर्बानी या इसकी हो जाती, इसके साथ साथ ये मसाइल भी हमें देखने के, हो सकता है हमारे ऊपर ज़कात के मामलात भी उनके लाजिम हो रहे हों। नफिल रोज़ा अगर तोड़ दिया तो ये रखना ज़रूरी?
जी, नफिल रोज़ा अगर आपने तोड़ दिया है, रख कर तोड़ा है, ये नफिल कोई भी इबादत आपने की, जैसे नफिल नमाज आपने पढ़ी और वो रख शुरू कर दी और फिर उसके बाद तोड़ दी, तो अब बहरहाल उसको पूरा करना वाजिब होगा। तो नफिल रोज़ा आपने रखकर अगर तोड़ा है तो फिर वो भी बाद में कज़ा करना होगा। यूं ही अगर नफिल नमाज आपने शुरू की और तोड़ दी तो वो भी बाद में आपको दोबारा अदा करनी होगी।
एक सवाल ये क्या जा रहा है कि ये हमारी कोई बहन मैसेज करके उन्होंने पूछा है कि मखसूस अयाम के जो हमारे कज़ा रोज़े हुए हैं, एक तो ये बता दें कि इनमें भी सहरी का ये ताल्लुक है और नीयत के हवाले से, दूसरा साथ ये पूछ रही हैं कि एक साथ ही ये रखने होंगे या वक्फे से रख सकते हैं?
कज़ा रोज़े मखसूस अय्याम में के ही अगरचे हों, बहरहाल उनके अहकाम वही कज़ा रोज़ों वाले हैं, तो उसमें सहरी तो ज़रूरी नहीं। हाँ, अलबत्ता रात की नीयत जो है वो ज़रूरी है कि सुबह सादिक से पहले पहले नीयत जो है वो होना ज़रूरी है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो माह रमज़ान के कज़ा रोज़े जो छूट गए हैं, चाहे इस वजह से या किसी की बीमारी की वजह से, तो जैसे ही सेहतमंद हो या जो उज़ुर था वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद जल्द अज जल्द जो है वो उसे अदा कर लें। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द अदा कर लें। एक साथ भी रख सकते हैं और अलग अलग करके भी रख सकते हैं, एक साथ रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द उन्हें अदा कर लें। अलबत्ता यहाँ ये बात याद रहे कि माह शव्वाल में लोग जो है वो शश शव्वाल के रोज़े भी रखते हैं, तो बस औकात वो ये चाहते हैं कि जनाब शश शव्वाल के रोज़ों की नीयत भी कज़ा रोज़ों में कर लें। तो कज़ा रोज़े में आप नफिल की नियत नहीं कर सकते, या नफिल में आप कज़ा रोज़े की नियत नहीं कर सकते, बल्कि अगर करेंगे दोनों की नियत तो कज़ा रोज़ा होगा, नफिल नहीं होगा, क्योंकि कज़ा रोज़ा बहरहाल नफिल के मुकाबले में, क्योंकि फ़र्ज़ की जगह पर वो आया है तो वो ज़्यादा ताकतवर है, तो लिहाजा वो अदा होगा। तो आप कोशिश अव्वलन यही कीजिए कि अपने कज़ा रोज़े जो है वो रख लीजिए। हाँ, अगर कोई शश की भी फजीलत हासिल करना चाहता है और टाइम इतना नहीं है कि वो माह शव्वाल में ही अपने कज़ा पहले पूरे कर ले, या हिम्मत इतनी नहीं है और फिर उसके बाद जो है वो अपने शश भी रख ले, तो बहरहाल वो शश पहले भी रख सकता है कि पहले शश शव्वाल के रोज़े रख ले और उसके बाद फिर जो है वो शव्वाल में ही या अगले महीने में अपने कज़ा रोज़े रख सकता है।
हमारी एक बहन सरगोदा से का ये मैसेज है, कुछ ऐसी क्रीम वगैरह अगर चेहरे पर लगाते हैं तो उसकी वजह से बाल भी आ जाते हैं चेहरे पर, तो औरतें अपने चेहरों की ये बाल साफ़ कर सकती हैं?
जी हाँ, औरतें बिल्कुल जो है वो अपने चेहरे पर जो भी बाल निकलते हैं आईब्रो के अलावा वो साफ कर सकती है।
ठीक है ठीक है जी, सवाल
मेरा सवाल ये है कि मस्जिद के अंदर अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग जब फर्ज अदा करते हैं या मुअक्कदा सुन्नतें अदा करते हैं और जब उनको कहा जाता है कि आप नवाफिस या गैर मुअक्कदा सुन्नतें अदा नहीं करते तो वो उल्टा नाराज हो जाते हैं कि हमने अपनी नमाज पढ़नी है, तो इस हवाले पे शरई रहनुमाई फरमा दें।
जी देखिए, कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान को अगर नमाजों के हवाले से कोई उसको नेकी की दावत देता है या जनाब जो है उसे कोई और बात कहता है कि यार ये काम ना करें ये कर लें, तो मकसद जो है वो उसकी खैरख्वाही होती है, भलाई होती है। अगर आप ये कहेंगे कि जनाब हमें अपनी नमाज पढ़नी, आप हमें ना टोको, हालांकि यही बात अगर कोई आपको बताए कि जनाब आप ये चार पैसा यहाँ से कमा रहे हैं, दो पैसा आप यहाँ से भी कमा सकते हैं, उसको आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पैसे मैं कमा रहा हूँ, तुम कौन हो तो मुझे बताने वाले। तो जब हम दुनिया के माल में ऐसा नहीं बोलते, तो दीन के अंदर अगर कोई आपको नेकियाँ जमा करने का, ज़खीरा करने का आपको मशवरे दे रहा है, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बल्कि बाद सूरतों में तो आप गुनाहगार भी हो रहे होते हैं, मसलन सुन्नत मौकदा छोड़ रहे हैं तो आप गुनाहगार भी हो रहे हैं, लिहाजा ऐसा हरगिज़ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि सामने वाले की बात को सुनना चाहिए। और वाकई अगर वो कोई ऐसी बात है जिस पर आप अमल करके गुनाह से बच सकते हैं या मज़ीद नेकियां हासिल कर सकते हैं, तो आपको उसे इख्तियार करना चाहिए, बल्कि जिसने आपकी तवज्जो दिलाई उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए।
माशाल्लाह माशाल्लाह। एक सवाल फेसबुक पर बार बार ये कोई भाई हमारे ये कर रहे हैं कि कई ऐसे अकाउंट्स बनाए जाते हैं मुख्तलिफ मोबाइल वाले, ऐसे सिम पर अकाउंट्स वो बनाने होते हैं, उसमें कुछ पैसे भी रखने होते हैं, ये बड़ा सवाल आ रहा है, और इस पर हमें MB फ्री मिलती हैं, इस पर हमें वो मिलता है मिनट्स मिलते हैं।
असल में बैंक का लोगों के जहनों में था, लेकिन अब हर बैंक बड़े जदीद जो है वो शक्ल के अंदर जो है वो इस वक्त मौजूद है। दर हकीकत ये मोबाइल अकाउंट्स के पीछे भी माइक्रो बैंक फाइनेंसिंग जो है वो मौजूद होती
अच्छा।
है जी, ये पूरा पीछे बैंक होता है, तो उसको प्रेजेंट जो है वही प्रेजेंट जो है वो मोबाइल कंपनी जो है वो कर रही होती है। तो बहरहाल अगर ना भी हो तो बैंक नाम थोड़ी हराम है, असल तो
बोला ही ना कि हम क्या ही ना करंट अकाउंट खुलवा लें, ये
तो बैंक में होने वाला वो काम जो कि गुनाह है उससे मना किया जाता है, वो काम मस्जिद में भी होगा तो उससे भी मना किया जाएगा भाई। ये थोड़ी कि बैंक के हमें नाम से चिड़े या उस बैंक का तो आप मना कर रहे हैं और मोबाइल कंपनी का है तो मना नहीं कर रहे।
हाँ।
तो सूद है, अगर कोई मस्जिद कमेटी भी जनाब जो है वो कोई ऐसा अपना अकाउंट बना लेती है, या हम लोग वैसे नहीं कई मसलों में बता चुके हैं कि बास कमेटियां इस तौर पर डलती हैं इलाके महलों के अंदर कि उसमें सूदी उनसर पाया जा रहा होता है, तो भाई वो अगरचे बैंक उनको तो नहीं कहा जा रहा होता लेकिन वो भी जो है वो हराम होती है। तो बात यह है कि बैंक से चिड़ नहीं है, उसमें होने वाला नाजायज जो काम है उसके ऊपर आपको शरई रहनुमाई दी जाती है कि वो जायज नहीं है जो सूद वाला मामला है। तो वही सूद वाला मामला अगर मोबाइल कंपनी में पाया जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी में पाया जाएगा, इवन स्कूल के अंदर पाया जाएगा या और किसी भी जनाब फाइनेंस की या अदर फाइनेंस की कंपनी में पाया जाएगा, तो वो नाजायज ही होगा। और जो सूद जो कर्ज पर जो नफा सूद है जो जिसकी बात की जाती है, वहाँ हदीस पाक में आया कुल्लू कर्ज जर्रा मनफियातन फहुआ रिबा, हर वो कर्ज जो नफा खींच के लाए, मनफियात खींच कर लाए वो सूद है। और मनफियात फकत पैसा नहीं होता बल्कि किसी भी किस्म की मनफियात, चाहे आपको फ्री कॉल्स मिनट्स मिल रहे हैं, फ्री SMS मिल रहे हैं, फ्री MBs मिल रहे हैं, या और कुछ आपको सहूलियात मिल रही हैं कि वैसे वो सहूलियात चार्जेस के साथ होती हैं लेकिन पैसा रखने पर आपको वही इदारा वो सहूलियात मुफ्त में दे रहा है और वो कंडीशनल है पैसा रखने के ऊपर, तो बहरहाल वो दर हकीकत कर्ज पर ही मनफियात दे रहा है और वो सूद है।
इस पे बाज़ वक़्त ये कहते हैं हम वो नफा नहीं ले रहे हैं, इसके दूसरे बेनिफिट हम ले रहे हैं कि ठीक है भाई हम अगर मिनट्स हैं, हमने सिम ही बंद कर दी
जी,
सही है वो सिम हमने साइड पे रख दी ना हम उसके मिनट। और एक तो सवाल मुझे ये ऐसा मैंने पढ़ा है, अब पहले मैं हम सोचते थे कि जब हम सूद की मुसम्मत बयान करते हैं ना तो शायद कुछ लोग कहते होंगे हाँ यार ये बड़े बड़े ताजरों का मसला है, ये उनका मसला है, ये उनके, गरीब आदमी एक मुतवस्त आदमी ये तबका बचा हुआ था किसी ना किसी हद तक, अब जब से ये सिम के अंदर इतने ये ऑप्शन आए तो मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा इब्तिला हो गया। और वो अब ये सवाल भी ऐसा है, ये कह रहे हैं कि वो जो MBs मिलती हैं उसको हम अच्छे काम में इस्तेमाल कर लें, मज़ार अभी के उसको कोई दीनी काम में हम यूज़ कर लें, नेट का अच्छा इस्तेमाल कर लें। तो भाई ये तो मिनटों में भी आप ये कह सके कि मैं उससे किसी को नेकी की दावत दे रहा हूँ तो मैं किसी को ये अच्छे पैगाम दे रहा हूँ।
मैं भी यही कहते हैं ना, बहुत सारे लोग वो
ठीक है
हम बैंक से वो पैसा लेके गरीबों की मदद कर देंगे, लेकिन गरीबों की मदद करना सवाब का काम है, लेकिन वो पाक पैसे से करना सवाब का काम है, हराम पैसे से करना सवाब का काम नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला पाक है और पाक माल को ही कबूल फरमाता है। लिहाजा राह खुदा में जब भी दें, जो भी खर्च करें वो पाक माल से दें, वरना अल्लाह तबारक व तआला हराम माल कबूल हरगिज़ नहीं फरमाता।
मंसर के नाज़रीन आपने सुनना मुलाहज़ा फरमाया, अल्लाह करीम आपको बहुत इसकी बरकतें दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी आपकी हिफाजत फरमाए, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, फी अमानिल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह।
जाने मसाइल दो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन है हमको रब से।